ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर फैसला करना चाहिए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इसमें विलंब होने के वैध कारण को संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाना चाहिए। पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी न देने के फैसले को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को भी राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में 3 महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो राज्य को न्यायालयों में जाने का अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर संवैधानिक कारणों से कोई विधेयक रोका जाता है तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपालों के कार्यों की समय सीमा तय करके वे उनके अधिकारों को कम करके नहीं देख रहा है, लेकिन राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति उचित सम्मान के साथ कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को स्वीकृति देने, स्वीकृति न देने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा जाएंगे। वे पहले हिसार जाएंगे और सुबह 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे तथा हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां लोगों को भी संबोधित करेंगे। हवाई यात्रा को सुरक्षित, सस्ती और सभी के लिए सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के मुताबिक प्रधानमंत्री 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। वे हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के तहत 1070 करोड़ रुपए की लागत से बने 14.4 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कल दोपहर जाफराबाद के एक घर से पिता और पुत्र के शव बरामद किए। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। धुलियान में कल दोपहर फिर से हिंसा भड़क उठी जिसमें 2 अन्य लोग घायल हो गए। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। इस मामले पर सुनवाई के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। श्री अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में रेलवे स्टेशनों पर आगजनी की घटनाओं की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से जांच कराने की भी मांग की है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से धर्म के नाम पर उपद्रव न करने की अपील की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी दी कि हिंसा में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल का दौरा करेंगे जहां वे मध्य प्रदेश सरकार के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े सभी प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार राज्य के डेयरी उद्योग के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसमें एक सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के T20 क्रिकेट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। ये सनराइजर्स की पंजाब के खिलाफ 10 मैचों में 9वीं जीत थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।